Hare Krishna. Shri Prabhupada Leela Amrit Prakaran 44 Ek Mandir Ho Krishna Sankhya 254 San Francisco July 7 हजारों लोग गोल्डन गेट पार्क से गुजरने वाले तीनों रथों का कई मीलों तक अनुगमन करते रहे। श्री प्रभुपाद सुभद्रा के श्री विग्रह के नीचे बीच वाले रथ पर बैठे थे। वे सुनहरे रंग की वही उन्हीं टोपी पहने थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहनी थी। वे एक भारी श्वेत स्वेटर पहने थे। उनके गले में लाल गुलाब के फूलों की माला थी। हाल की लंबी यात्रा के बावजूद वे स्वस्थ एवं स्फूर्तिमय थे। उन्होंने भक्तों और जुलूस में चलने वाले लोगों के समुद्र पर दृष्टि डाली और इस दिव्य दृश्य से उन्हें बहुत संतोष हुआ। 10,000 की भीड़ के सामने बोलते श्री प्रभुपाद ने कहा, अमरीकियों को कृष्ण भावनामृत के प्रचार में विश्व का नेतृत्व करना चाहिए। वे बोले, मैं जानता हूं यहाँ उपस्थित सभी अमरीकी पुरुष और महिलाएं शिक्षित और प्रबुद्ध है और मैं अमरीकियों का आभारी हूँ जिन्होंने संसार भर में मेरे इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जब चैतन्य महाप्रभु ने पहले पहले हरे कृष्ण आंदोलन आरंभ किया था तो उन्होंने कहा था, भारत उम्मीद है मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करेगर पर उपकार। इस प्रकार उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि जिसने मनुष्य के रूप में भारत भूमि में जन्म लिया है उसे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को समझना चाहिए और मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इसका प्रचार समस्त संसार में करना चाहिए। उन्होंने एक भी भविष्यवाणी की कि सारे संसार के गांवों और नगरों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलेगा। आप सभी युवा अमरीकनों के सहयोग से जो कृपा पूर्वक इस आंदोलन को फैलाने में मदद कर रहे हैं, यह आंदोलन समस्त संसार में वास्तव में विख्यात हो रहा है। अभी हाल में मैं मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया गया था। वहां हमने एक ऐसा उत्सव मनाया था, उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, हमारे साथ नृत्य किया और गाया। तत्पश्चात मैं शिकागो गया, वहां जहां हमने वैसा ही समारोह किया और अब आज सवेरे यहां आया हूं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता है कि आप भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये बातें बहुत पुरानी है, तब से आज में कुछ बदलाव आया क्या, चेंज आया? चेंज दिखाई देता है करंट सिनेरियो। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, कुछ लाइनें पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि मैं हाल में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया गया था जहां हमने ऐसा ही उत्सव मनाया। उसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, हमारे साथ नृत्य किया। तत्पश्चात मैं शिकागो गया, वहां भी हमने वैसा ही समारोह किया और आज सवेरे मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मीन्स सैन फ्रांसिस्को। और मुझे ये देखकर प्रसन्नता है कि आप भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं। क्या चेंज क्या दिखाई देता है, बदलाव क्या है, प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस कुछ चेंज है और इसको एनालाइज करते हैं एक मिनट में कि उस समय इस कार्य को करने के लिए केवल प्रभुपाद थे। आज इस कार्य को करने के लिए उनके प्रभुपाद के स्वयं के हजारों शिष्य और उन शिष्यों के फिर आगे हजारों शिष्य है कि नहीं। इतना वास्ट फैला है ये पिछले सालों के अंदर। दूसरा बदलाव क्या दिखाई देता है कि मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से शिकागो डिस्टेंस एक कितनी दूरी पे जाके नेक्स्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। आज थोड़ा सा डिस्टेंस चलते हैं तो एक प्रोग्राम हो रहा, एक शाम का प्रोग्राम है, एक दोपहर का प्रोग्राम है, ایک صبح کے لیے بھی آفر آ جاتی ہے, ایک صبح کے سارے جنم کر دیجیے. تو یہ جو اوپر لکھا گیا ہے کہ ان ایوری ٹاؤن اینڈ ولیج, بھوشیہوانی کی چیتنیہ مہاپربھو نے کہ سارے سنسار کے گاؤں اور نگروں میں کرشن بھاو نامت آندولن پھیلے گا. وہ پھیلنا شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے, میں مانتا ہوں کہ سب جگہ نہیں ہے, ایوری ٹاؤن اینڈ ولیج میں نہیں ہے, پرنتو اگر پروگرس دیکھی جائے تو پروگرس جو ہے ریمارکیبل ہے یا ریمارکیبل نہیں. پروگرس اسپشٹتا دکھتی ہے یا نہیں دکھتی ہے, کیا محسوس ہوتی ہے؟ اٹ از ویزیبل. آج اتنے بھکت ہونے کے باوجود ہم لوگ کئی بار جو ہے فیل ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی بھکتوں کی کمی ہے اور پروگرامس ڈیمانڈس زیادہ. ابھی ایک ویکتی رانی کھیت کے پاس زمین دے رہا ہے, مندر بنائے گا. ایک ویکتی کوٹ دوار کے آگے زمین دے رہا ہے, مندر بنائے گا. ایک بھٹنڈا کے پاس زمین دے رہا ہے, مندر بنائے گا. مطلب جو کرشن بھاو نامت آندولن ہے یہ جگہ جگہ پھیل رہا ہے, پرنتو ابھی بھی ہمیں ایک کمزوری ہے کہ ہمیں بھکتوں کی ماترا ایک مندر کو چلانے کے لیے سفیشینٹ نہیں. وہ سفیشینٹ کیسے ہوگی؟ جب ہم تھوڑی محنت اور زیادہ کریں گے, اور زیادہ بھکت بنائیں گے, اور زیادہ برہمچاریز بنیں گے, اور جگہ جگہ پھیلیں گے, جگہ جگہ پرچار ہوگا, جگہ جگہ ٹیمپلز بنیں گے, جگہ جگہ مینجمنٹ ہوگی, اور الٹیمیٹلی کرشن بھاونا آندولن جو ہے وہ سارے سنسار میں پھیلے. آگے لکھتے ہیں, جب روحباد بول رہے تھے اس سمے ان کی انگلیاں کرتال پر ہلکے ہلکے چل رہی تھی, ان کی آنکھیں آدھی بند تھی. انہوں نے اپنے شبدوں کا چین پورے وشواس کے ساتھ کیا اور ان کے شبدوں کی پرتی دھونی پورے میدان میں گونج رہی تھی. روحباد نے اپنے شروتاؤں سے انوروھ کیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ کرشن بھاونامرت آندولن سامپردائک ہے, یہ سب کے لیے ہے, یہ سب کے لیے ہے, کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, کوئی اس میں بھید بھاؤ نہیں ہے, کیونکہ اہم کی واسطک پرکرتی آدھیاتمک ہے. پوتر نام کا گائن اور ناچ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ سب کے لیے اپلبدھ ہے. جو بھی اس مہامنتر کا جپ کرے, ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام. کسی بھی کھن مر سکتا ہوں, اس لیے میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں اس آندولن کو گمبھیرتا سے لے, آپ سوئم اسے سمجھیں اور تب اپنے پورے دیش میں اس کا پرچار کریں. امریکہ کے باہر لوگ عام طور پر امریکہ کا انگمن اور نقل کرتے ہیں. میں ساری دنیا میں گھوم رہا ہوں اور ہر جگہ دیکھتا ہوں کہ آپ کی نقل پر دوسرے دیشوں میں بھی گگن چمبی عمارتیں بن رہی ہیں اور وہ انیہ باتوں میں بھی آپ کی نقل کر رہے ہیں. اتہ یدی آپ کرپا پوروک کرشن بھاونا بھاوت ہو جائیں تو بھگوان کے بھاوناتمک پریم میں وپور ہو کر کیرتن کریں اور ناچیں تو سارا سنسار آپ کا انوسرن کرے گا. اس پرکار سارا سنسار بیکنٹھ بن سکتا ہے اور وہاں پھر کوئی کشٹ نہیں رہ جائے گا. بہت بہت دھنیواد. گروداس نے اسکان کے سبھی کیندروں کو پتر بھیج کر بھکتوں کو ورنداون میں کرشن بلرام مندر کے ادھاٹن سماروہ میں اپستھت ہونے کے لیے آمنترت کیا تھا. اس نے بمبئی اور کلکتہ کے آجیون سدسیوں کو آمنترت کیا تھا اور گاڑیوں سے اترنے کے دن پر ان کے لیے موٹر کاروں کی ویوستھا کر رکھی تھی. پربھوپاد بھی اپنے ششیوں کو جنماشٹمی کے اوسر پر ورنداون آمنترت کر رہے تھے. لاس اینجلیس میں سینکڑوں بھکتوں کے سامنے بھاشن دیتے ہوئے انہوں نے کہا, میں تم سبھی کو کرشن بلرام مندر کے ادھاٹن کے لیے ورنداون آنے کو آمنترت کرتا ہوں. پربھوپاد نے اپنے گرو بھائیوں کو بھی ڈاک سے آمنترن بھیجا تھا. جب ان میں سے ایک نودیپ کے سریدھر مہاراج نے آمنترن سویکار کیا تو پربھوپاد نے اتر میں انہیں سویدھا جنک آواس کے لیے وشوست کیا اور کلکتہ سے ورنداون کی یاترا کے لیے سب سے آسان راستہ بھی بتایا. شری پربھوپاد نے سریدھر مہاراج کو اپنے پرچار کے بارے میں لکھا, آپ کو یہ جان کر پرسنتا ہوگی کہ ہماری پستکیں خوب بک رہی ہیں. गत वर्ष हमने लगभग 40 लाख पुस्तकें बेची थी और इस वर्ष 6 माह के अंदर ही हमने गत वर्ष का कोटा पूरा कर दिया है। कोटा कितना कोटा प्रभु जी? बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कितना कोटा था पिछले साल? कितना किया? कितना कोटा किया? 2.5 लाख। और 2.5 लाख एक महीने में किया था। कितने महीने में? इस बार 2.5 लाख कितने दिन में होना चाहिए? हाफ एक साल से 6 महीने में किया, तो हम जो एक महीने में करते हैं उसका अगर आधा करें तो कितने दिन में हो जाना चाहिए? तो कोटा क्या रहेगा इस साल? अरे वो इसलिए हम सहज ही आशा कर सकते हैं कि इस वर्ष हम गत वर्ष की अपेक्षा 2 गुनी बिक्री करेंगे। कठिनाई केवल यह है कि अब हम फैलकर एक विश्व संस्था बन गए हैं और इनको बनाए रखने के लिए हम बहुत कुशल प्रबंध की आवश्यकता है। कृष्ण की कृपा से सब ठीक चल रहा है। जहां तक प्रचार के लिए यात्रा का प्रश्न है, मेरे लिए कुछ कठिन हो गई है क्योंकि मुझे वही दिल की बीमारी है जो आपको है। फिर भी मैं केवल उन युवा लोगों और लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलता फिरता हूं जो मेरे लिए ये कार्य कर रहे हैं। 15 जुलाई को वृंदावन पहुंचने की प्रस्तावित तिथि के केवल 10 दिन पहले उन्होंने लगभग 100 पत्र अपने सन्यासी शिष्यों को लिखे कि वे वृंदावन आए, जिससे उनकी अनेक व्यक्तिगत समस्याओं और कार्यक्रम के मसलों का समाधान किया जा सके। जो प्रभुपाद के व्यस्त कार्यक्रम व्यस्त यात्रा कार्यक्रम के कारण लंबे समय से अटके पड़े थे, मैं आपको हार्दिक निमंत्रण भेजता हूं कि आप वृंदावन में हमारे उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हों। उस समय वहां हमारे सभी सन्यासी उपस्थित होंगे और आप भी एक नियमित सन्यासी होने के नाते आए और भाग लें, यह मेरी इच्छा है। जब करंधर, जो हाल ही में भारत में जीबीसी सचिव नियुक्त हुआ था, इस बात में संदेह प्रकट करने लगा कि समय पर हर काम हो जाएगा या नहीं, तो प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस से उसे जवाब दिया, उत्सव बहुत शान से होना चाहिए। यदि धन की कमी हो तो उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रसाद सभी अतिथियों के लिए भरपूर होना चाहिए। आप ऐसी योजना बनाइए और मैं वित्त की व्यवस्था करूंगा। प्रसाद वितरण पूर्ण रूपेण चलता रहना चाहिए। जहां तक समय पर हो, मंदिर न पूर्ण होने की बात है, वह आपकी जिम्मेदारी है। मैं क्या कर सकता हूं? यद्यपि प्रभुपाद ने करंदर को जोरदार जवाब दे दिया था, किंतु भारत मूल के प्रधान प्रबंधक की ओर से जो संदेहात्मक टिप्पणी उन्हें प्राप्त हुई थी, उसने उन्हें विक्षिप्त। उन्होंने सोभी को लिखा कि जो वृंदावन में निर्माण का इंचार्ज था, मैं मन में कुछ विक्षुब्ध हूं क्योंकि करंधर का पत्र कहता है कि कुछ कार्य उत्सव के समय भी चलता रह सकता है। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद को समाचार मिला कि लंदन की रथ यात्रा, जो उस मास के अंत में होने वाली थी, स्थानीय अधिकारियों द्वारा रद्द कर दी गई थी। अधिकारियों का कहना था कि गत वर्ष के जुलूस में यातायात बहुत बाधित हुआ था। प्रभुपाद ने आग्रह किया कि भक्तों को इस अनुचित आदेश का प्रतिरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा यह धार्मिक भेदभाव है, और उन्होंने परामर्श दिया कि लंदन में रहने वाले सहानुभूतिपूर्ण भारतीयों को अपने राजदूत से मिलना चाहिए और मामले को महारानी के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध करना चाहिए। मेलबोर्न के रेवरेंड पावर द्वारा हाल ही में दिए गए वक्तव्य का उपयोग ये दिखाने के लिए किया जा सकता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन से ईसाइयों को शंकित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने प्रतिरोध प्रकट किया कि पुलिस की आपत्ति का तात्पर्य है कि पूरे धार्मिक समारोह पर रोक लगा दी जाए। ये क्या है? केवल कुछ तकनीकी गलती के कारण वे हमारे पूरे धार्मिक समारोह को रोक देंगे। श्री प्रभुपाद ने कहा, यदि नगर के अधिकारी जुलूस पर प्रतिबंध जारी रखते हैं तो भक्तों को चाहिए कि हाइड पार्क में एक अचल रथ निर्मित करें जो जुलूस निकाले बिना ही वहां उत्सव के बाद हम श्री विग्रह को एक पालकी में ट्रेफलगार स्क्वायर ले जाएंगे। रथ अपनी जगह पर रहेगा या नहीं चलेगा, किंतु हम श्री विग्रहों को पालकी में बिठाएंगे और ट्रेफलगार स्क्वायर ले जाएंगे। पुलिस कमिश्नर की अनुमति इसके लिए प्राप्त करो और उत्सव के साथ साथ वहां पहुंचने के बाद हम प्रतिरोध करेंगे, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, किंतु रथ अवश्य दिखाई पड़ना चाहिए और जनता को मालूम होना चाहिए कि दुष्ट पुलिस ने जलूस रोक दिया है। प्रॉब्लम आती थी, विदेशों में भी समस्याएं आई है। प्रभुपाद ने समस्या का हल कितने सुंदर तरीके से निकाला है कि रथ को मत चलाओ, रथ बनाओ और खड़ा रखो, और पब्लिक को दिखता रहना चाहिए कि यस यही रथ को सड़क पे चलना था, परंतु इसको दुष्ट पुलिस ने चलने नहीं दिया। प्रभुपाद ने अपने आदेश को कई बार दोहराया। अपने अनुयायियों को आदेश देते समय उनका मन बहुत उदास था। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, प्राण आंछे याद से ही हेतु प्रचार, जिसमें प्राण है वह प्रचार कर सकता है, मृत व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए तुम प्राणवान बनो, मृत भक्ति मृत व्यक्ति की तरह मत बनो। मेरे सभी गुरु भाइयों की तरह नहीं, वे मृत व्यक्ति हैं, इसलिए मेरे कार्यों से ईर्ष्या करते हैं, उनमें जीवन नहीं है। यदि तुम लोग आराम की जिंदगी चाहते हो तो श्री विग्रह का दर्शन कराकर सोना चाहते हो तो इस आंदोलन को विफल समझो, मेहनत जरा ज्यादा करनी पड़ेगी। प्रभुपाद का सुनना सही नहीं था कि उनका रथ यात्रा जैसा महत्वपूर्ण उत्सव रोका जा रहा। उन्होंने कहा, हम सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन हमें ये उत्सव अवश्य करना है। गत वर्ष उन्होंने देखा था कि सैकड़ों हजारों लोग ट्रेफलगर स्क्वायर में कड़ी धूप में 3 घंटे खड़े रहे और वे चर्च नहीं जाते। अतः उन्होंने देखा है कि हमारे आंदोलन में कुछ विशेषता है, अन्यथा लोगों ने इतनी रुचि क्यों प्रदर्शित की है। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, हाँ ठीक, जैसे सैन फ्रांसिस्को पत्र में छपा है, उन्होंने स्वीकार किया है कि यह सबसे अधिक लोकप्रिय उत्सव है। अमेरिका जैसी जगह में एक रथ यात्रा जैसा उत्सव नया नया था वहां पर उस समय, उसको जो है सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर जो है बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। कहते हैं, हाँ सैन फ्रांसिस्को में 15,000 लोगों ने शांत भाव से मेरा भाषण सुना, अतः वे देख रहे हैं कि हमारे आंदोलन में कुछ चीज है, हमारे आंदोलन में कुछ चीज है। किंतु कभी कभी कुछ पार्टियां नहीं चाहती कि हम बिना आपत्ति के आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि इससे उनका खात्मा हो जाएगा। लॉस एंजलिस से प्रस्थान करने के दिन प्रभुपाद ने वहां एकत्रित भक्तों को मंदिर में संबोधित किया, प्रोत्साहित किया कि कृष्ण भावनामृत के प्रति निष्ठावान बने रहे, और उन्होंने उनकी महत्ता के प्रति अपनी निजी भावनाएं भी अभिव्यक्त की। उनकी निरंतर यात्रा उनके भक्तों के लिए थी, जिससे वे मजबूत बने रहे, और यदि वे मजबूत बने रहेंगे और प्रभुपाद द्वारा दिए गए सरल कार्यक्रम का अनुसरण करते रहेंगे तो उनकी सफलता निश्चित है। उन्होंने कहा, किसी न किसी तरह हमने ये कार्यक्रम पश्चिम के देशों में आरंभ किया है और आप लोग इतने प्रबुद्ध हैं कि आपने इसे तुरंत अपना लिया है, इसीलिए इसे मानक बनाए रखिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। यह कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन मार्ग से विचलित मत हो, तब तुम पक्के रहोगे। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। यदि आप कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहे तो माया आपका स्पर्श तक नहीं कर सकती। अतः यही मेरी प्रार्थना है, मैं सारे विश्व की यात्रा कर रहा हूँ, मैं ये देखने जा रहा हूँ कि डलास और न्यू वृंदावन में काम कैसे चल रहा है। मेरी यात्रा स्वाभाविक है, मैंने ये आंदोलन आरंभ किया है, मैं देखना चाहता हूँ कि अच्छी तरह चले, विचलित मत हो, यही मेरी प्रार्थना है। प्रभुपाद रोने लगे। सीधी क्वालिटी की प्रार्थना कर रहे हैं भक्तों से, रिबुटी से जो आए हुए हैं, और उनको प्रार्थना करते करते प्रभुपाद का गला रुंध जाता है। यह शब्द इस्तेमाल किए हैं कि प्रभुपाद रोने लगे और अपने भाषण शासन का अंत उन्होंने ये कहकर किया कि तब आप दृढ़ रहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वृंदावन, न्यू वृंदावन कहा है? वृंदावन तो ये रहा हमारे पास है। कौन जगह है, कितना बड़ा एरिया है? 3,500 एकड़ है, जो मैंने पढ़ा था इससे बहुत साल पहले, अब तो चेंज हो गया था। 3,500 एकड़ हमारी बिक रही है। July 18, 1974 जालंधर का एक पत्र श्री प्रभुपाद को मिला, जिसमें सूचना थी कि उसने भारत की GBC से त्याग पत्र दे दिया है। उसमें इतनी जिम्मेदारियां थी कि उन्हें निभा नहीं सकता था, क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मैं हाल ही में लौटा था। आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहेगा लेकिन GBC में नहीं रह सकेगा। श्री प्रभुपाद को फिर धक्का लगा। वो अपने कमरे में न्यू वृंदावन में कई GBC के सदस्यों के सामने उन्होंने पूछा, क्या करना चाहिए, हम क्या करें, क्या भारत की इन परियोजनाओं को छोड़ दिया जाए? तो भक्तों ने उत्तर दिया, किंतु श्री प्रभुपाद, भारत की भी परियोजनाएं आपको बहुत प्रिय हैं। प्रभुपाद ने पूछा, लेकिन क्या किया? गुरुदास के अतिरिक्त वृंदावन का अन्य कोई भक्त नहीं सोचता था कि निर्धारित महान उद्घाटन के समय तक इमारत तैयार हो जाएगी। काम हमेशा की तरह बहुत धीमी गति से चल रहा था और अर्श विग्रह कक्ष को छोड़कर शेष भूमि अभी भी निर्माण स्थली बनी हुई थी। ना वेदियां बनी थी, ना अर्श विग्रह थे। तेजास का विचार था कि गुरुदास प्रभुपाद को अप्रसन्न करने से इतना डरता है कि वे मानने को तैयार नहीं था, इमारत समय पर तैयार नहीं हो सकेगी। तिथि निश्चित हो चुकी थी और प्रभुपाद कोई बहाना सुनना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने लिखा, यह कार्य जन्माष्टमी तक होना ही है, देर का कोई प्रश्न नहीं है। गुरुदास ने माना कि इमारत का निर्माण जन्माष्टमी तक पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने तर्क दिया कि उद्घाटन समारोह फिर भी हो सकता है। ये मंदिर का आखिरी काम तब तक पूरा न भी हुआ होगा तो भी। चूंकि भारत में कोई GBC का नियमित सचिव नहीं रह गया था, इसलिए प्रभुपाद को वृंदावन मंदिर के निर्माण के विषय में ठीक समाचार नहीं मिलते थे। जब अप्रैल में तमाल कृष्ण गोस्वामी पश्चिम में प्रचार करने चले गए और उसके कई महीने बाद प्रभुपाद ने करंधर की नियुक्ति उनके स्थान पर की थी। अब कुछ सप्ताह बाद ही करंधर ने त्याग पत्र दे दिया था, अतः केवल गुरुदास की रिपोर्ट ही प्रभुपाद को मिली थी। जुलाई का अंत निकट आ रहा था और भक्त वृंदावन के लिए प्रस्थान की तैयारी में जुट गए थे। केवल घोर विफलता का मुंह देखने के लिए। अभी सबके मन में बात समा रही है कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। जन्माष्टमी तक जो है कंप्लीशन हुआ नहीं तो उद्घाटन जो है फेल हो जाएगा, ये बात मन में आ चुकी। वृंदावन, संसार के विभिन्न मंदिरों से बहुत बृहद उद्घाटन समारोह के लिए 25 भक्त पहले ही पहुंच चुके थे और वृंदावन के भक्तों के साथ मिलकर वे सब प्रभुपाद के चारों ओर प्रसन्नता पूर्वक घेरा बनाकर खड़े हो गए। उनके लिए कोई विधिवत स्वागत द्वार नहीं बनाया गया था और प्रभुपाद अर्ध निर्मित दीवारों, बालू और ईंट के ढेरों से होते हुए अर्श विग्रह भवन की ओर बढ़ने लगे। वहां भी श्रृंगार समार का अभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था और निर्माण का सामान चारों ओर बिखरा पड़ा था। निर्माण स्थली का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पूछा, ये क्या है, यहां तो कुछ दिखाई नहीं देता, मंदिर कहां है? मंदिर तुमने तो मुझे बताया था कि मंदिर पूरा हो गया है। गुरुदास, सुरभि, गुणार्णव और अन्य शिष्य जिन पर निर्माण की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी थी, उत्तर देने में असमर्थ थे और उनके चेहरे सफेद। प्रभुपाद अत्यंत मोहित थे, इसका उद्घाटन कैसे हो सकता है? बाहर से आए भक्त भी आपस में बात करने लगे, ये तैयार नहीं है, इसका उद्घाटन हम कैसे कर सकते हैं? एक भक्त ने कहा, किंतु प्रभुपाद, सारी दुनिया के भक्त यहाँ जमा हो रहे हैं। प्रभुपाद बोले, उन्हें तुरंत रोक दो, उद्घाटन बाद ने बुलबुला फोड़ दिया था, इस मोह का अंत हो गया था कि विशाल उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। बुलबुला का क्रोध बड़ा भयानक था और जो भक्त उन्हें घेर कर खड़े थे अब शांत चित्त और प्रसन्न मुख नहीं रह गए। बुलबुला ने विनय किया, तुम लोग इस मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे थे या कुछ बना ही नहीं? उद्घाटन में शामिल होने के लिए जब वहां से हरिकेश बोला, वेदी तैयार है, हम अर्च विग्रह की स्थापना कर सकते हैं, और उसने बोलना है कुछ प्रभुपाद चिल्लाए, तुम लोग इस मंदिर का उद्घाटन नहीं कर सकते, ये मंदिर पूरा नहीं हुआ है। तब श्री प्रभुपाद अपने घर में चले गए, उनके पीछे वृंदावन के प्रबंधक और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति भी गए। प्रभुपाद के इस क्रोध में जो उनसे दूर रह सका वह अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा था, सिर्फ मेरे पे गुस्सा नहीं फूटा, मैं बच गया। वह अपने आप को सुरक्षित अनुभव कर रहा था। सुरभि की पत्नी प्रभुपाद के प्रचंड क्रोध से डरकर भागती हुई कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए चली गई। कमरे में पहुंचकर प्रभुपाद का क्रोध और बढ़ गया। गुरुदास के कुप्रबंध के लिए उन्होंने उसे खूब डांटा और सुरभि पर भी चिल्लाए। सुरभि स्वामी के बारे में जानते हैं? सुरभि स्वामी कब? मैं थोड़ा सा आपको फीडबैक देता हूं। 1985 में जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद पंजाबी बार टेम्पल नहीं होता था, हमारे पास फाउंडेशन थी बट डीटीज नहीं थी। यहाँ तो जो पुराना वाला 14/63 वाला जो घर था जहाँ पे फिर बाद में टेम्पल बना है, उसका जो जहाँ पे लेक्चर होता था हॉल, उस हॉल के अंदर जो है बड़े बड़े स्टैंड और उसके ऊपर बड़े बड़े फट्टे लगे हुए थे जिसमें कि सुरभि स्वामी जो है मायापुर के नक्शे और मायापुर की प्लानिंग सारी मांग किया करते थे। वॉज वेरी लॉन्ग बैक, प्रभुजी को बताऊंगा दिनों की बातें। ये उन दिनों हम उनसे मिले और एक मैगजीन छपी थी उन दिनों में मायापुर के बारे में, स्पेशल इशू था, पीटीजी नहीं थी, उन्होंने स्पेशल इशू मायापुर का कंस्ट्रक्शन मैगजीन छपी, उसमें सब दिखाया था किस तरीके से यहाँ पंजाबी बाग में मैप्स की तैयारी हो रही है और सारे स्टैंड लगे हुए हैं, सुरभि स्वामी अपना उसमें सारा कार्य कर रहे हैं। तो उन दिनों को जो है यहाँ पर मायापुर का जो फर्दर डेवलपमेंट था जो सारा कुछ बनता था उसका प्लानिंग सारी चल रही थी। इस इनिशियल जो बन चुका था ठीक है, जो फर्दर आगे चलना था आगे बढ़ना था सारी प्लानिंग हुआ करती थी। तो सुरभि पर भी चिल्लाए, वे उन सबों पर आग बबूला हुए, किसी को साहस नहीं हुआ कि कोई सुझाव दे या बहाना बने। तो कहते हैं ना, नो अपील नो दलील, कोई अपील नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन दलील भी नहीं। डर से सभी के चेहरे फक थे, सभी उदास थे। अचानक प्रभुपाद ने पूछा, क्या इस सारी गड़बड़ी के बावजूद मंदिर का उद्घाटन संभव था? सुरभि की ओर मुड़कर बोले, क्या तुम कम से कम अर्च विग्रहों का कमरा तैयार कर सकते हो? ये हमारे संघ के लिए अपमान की बात है, लोग क्या सोचेंगे, हम चारों ओर इसकी घोषणा कर चुके हैं। सोचिए, जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो रही है और सवेरे पता लगे पंडाल ही तैयार नहीं है, तो क्या इमेजिन। सुरभि ने डरते हुए दूसरे विस्फोट का सामना करने का खतरा उठाते हुए कहा, एक विस्फोट तो हो चुका है, एक गुलगुला फूट चुका है, दूसरे की तैयारी है। श्री प्रभुपाद वास्तव में इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यार होगा या नहीं होगा किसी को कोई जानकारी नहीं है, सब ब्लैंक है, सब अंधे कुएं में तीर लगा रहे हैं। अपना कुछ बदलते प्रभुपाद बोला, ओह तुमने कोई प्रचार नहीं किया है, आमंत्रण पत्र नहीं भेजे थे? अभी तक नहीं प्रभुपाद, वृंदावन के लोगों को आमंत्रण पत्र नहीं भेजे गए हैं, वे इसको उद्घाटन की आशा अभी भी नहीं करते क्योंकि जो यहाँ आए हैं वे देखते हैं कि मंदिर का उद्घाटन अभी संभव नहीं है, वे जानते हैं कि यह तैयार नहीं है। थ्योरी चढ़ाते हुए प्रभुपाद ने कहा, यह तो एक तमाशा बन गया, घोर विफलता है। विरक्ति से भरकर उन्होंने वृंदावन के अपने प्रबंधकों को घूर कर देखा, हमें उद्घाटन करना है, जन्माष्टमी पर उद्घाटन कैसे हो सकेगा? सुरभि ने कहा, श्री प्रभुपाद दरवाजे तैयार नहीं है, अभी लकड़ी की कटाई चल रही है। प्रभुपाद ने यमुना से अर्ष विग्रहों के बारे में पूछा। उसने कहा कि उनका सामान खरीद लिया गया है किंतु सिंहासन तैयार नहीं है। जिस पे अर्ष विग्रह स्थापित करने हैं वो सिंहासन तैयार नहीं है। प्रभुपाद ने पूछा, तुम्हारा मत क्या है? यमुना बोली, मैं कुछ कहने के लिए बिल्कुल अयोग्य हूं, यद्यपि मुझे बोलने का अधिकार नहीं, तथापि मैं समझती हूँ कि मंदिर का वास्तविक उद्घाटन अभी असंभव है। तीसरा बुलबुला फूट रहा है। बोले, पुजारी नहीं, अरे एक बात और समझ, सिंहासन नहीं है, मंदिर का स्थान तैयार नहीं है और पुजारी भी नहीं। विफलता की अनुभूति के साथ वो बाद में अंतिम निर्णय के भाग से कहा, तब हम उद्घाटन नहीं करेंगे, किंतु हमने दुनिया भर से बहुत लोगों को आने के लिए आमंत्रित कर रखा है और मुझे यहाँ के बारे में कुछ बताया नहीं गया, अब तुम ही लोग निर्णय करो। प्रभुपाद ने पूछा, हम उद्घाटन कब कर सकते हैं? क्या है दिवाली पर संभव है? दिवाली कब है? अक्टूबर में। श्रील प्रभुपाद, एक भक्त ने सुझाव दिया कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आविर्भाव दिवस कैसा रहेगा, ये दिसंबर के अंत में आने वाला है। मतलब वो नवंबर के अक्टूबर की बात कर रहे हैं, वो नौ तक खींच के दिसंबर तक ले गए, दो महीने और कोई बात नहीं। प्रभुपाद थे अप्रसन्न दिख रहे थे। सुरभि ने कहा, अभी 6 महीने लगेंगे, वास्तव में 7 महीने। तब प्रभुपाद ने अप्रैल में रामनवमी का दिन चुना। उद्घाटन भक्तों के मायापुर और वृंदावन में वार्षिक जवाब के साथ हो सकता है। सुरभि फिर बोला, वह भारत में निर्माण के अनुभवों के कारण बहुत निराशावादी हो गया था। उसने कहा, श्री प्रभुपाद, सब कुछ निर्भर करता है हमारे सीमेंट पाने पर। हमें सीमेंट गवर्नमेंट से प्राप्त करना होता है। उन दिनों में आई रिमेम्बर, उन दिनों में बड़ा स्ट्रिक्ट था, राशन कार्ड में सीमेंट मिला करता था। अगर बिल्डिंग है हाउस तो राशन कार्ड में नक्शे के अनुसार एक सीमेंट की बोरियाँ सरकारी कोटे से एक सेंक्शन होती थी, तब आप कुछ बना सकते। अभी उद्घाटन करने में सबसे बड़ी बाधा यही है कि यदि सीमेंट मिल जाए तो हम संभवतः यह उद्घाटन 3 महीने में करें। प्रभुपाद ने जैसे पराजय स्वीकार कर ली, कहा, ठीक है, तिथि निश्चित करने से कोई लाभ नहीं है। वह बोले, उद्घाटन अगले जन्माष्टमी के पहले हो जाएगा। उनका स्वर व्यंग से बना था, यदि सीमेंट मिल गया तो ये 3 महीने बाद हो सकेगा। विशेषकर गुरुदास के प्रति वे प्रश्न पूछते थे किंतु उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने गुरुदास से हिसाब किताब मंगाया और तब उसे और अधिक डांट पिलाई। जयपुर के एक महंगे होटल में गुरुदास के ठहरने की रसीद देखकर प्रभुपाद ने घोर आपत्ति की। गुरुदास जैसे अकेला पड़ गया। जब प्रभुपाद की उससे बातचीत समाप्त हुई तो गुरुदास अपने कमरे में चला गया और वहां से तब तक नहीं निकला जब तक प्रभुपाद ने उसे दोबारा नहीं। श्री प्रभुपाद ने वृंदावन में मंदिर के अध्यक्ष बदलने की चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने हरिकेश के नाम का सुझाव दिया, किंतु उन्होंने कहा कि गुरुदास और उसकी पत्नी को अतिथि गृह का प्रभारी बनाया जा सकता है, जो इस समय तक जमीन में केवल गढ़े के रूप में था। गेस्ट हाउस नहीं, गेस्ट हाउस की जगह क्या है? जमीन में गड्ढे हैं, धरती में खड्डे हैं। तो प्रभुपाद ने उसको ऑनर देने के लिए, जितना इसने पहले काम किया इसको डिस्कार्ड ना किया जाए, उसको ऑनर देने के लिए कहा कि इसको जो है अतिथि गृह का प्रभारी बना दिया जाए। उन्होंने गुरुदास को पुनः बुलाया और पूछा, यदि उसे वृंदावन के अतिथि गृह का प्रभारी बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? उन्होंने उसे यह भी सुझाया कि वृंदावन में जयपुरिया अतिथि गृह जाए और अतिथि गृह की व्यवस्था के बारे में वहां से जानकारी प्राप्त। गुरुदास ने कहा, किंतु प्रभुपाद, जयपुरिया अतिथि गृह में किराया इतना कम लिया जाता था कि मुझे लगता है उसे आर्थिक सहायता कहीं अन्यत्र से मिलती है, कोई और देता है, ये पैसा लेते हैं उससे गेस्ट हाउस नहीं चलता। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये श्रीमान जयपुरिया मारवाड़ी व्यवसायी है, वह अतिथि गृह पर हानि नहीं उठा रहा है, वह लाभ कमा रहा है, ये उसके प्रबंध की कला। कैसे कराना है, ये भाड़े के लोग तुम्हें ठग रहे हैं, तो अपने आप को मत ठगे जाने दो। इन सभी भक्तों के लिए धन संग्रह करना आसान नहीं है, ये सब कृष्ण का धन है और केवल कृष्ण के कामों में ही लगाया जा सकता है। इस धन की रक्षा करो, इसे गलत हाथों में न पड़ने दो। मैं नहीं चाहता कि ठेकेदार हमारी परियोजनाओं की कीमत पर धनाढ्य बने। मैं उस इमारत में संगमरमर चाहता हूं। संगमरमर कहां? सुरभि ने पूछा, मुझे संगमरमर कहां से मिलेगा? ये मंदिर बन रहा है, संगमरमर का पता नहीं। और सवाल ये हो रहा है कि संगमरमर मिलेगा कहां से? रूपा ने चिल्लाकर पूछा, तुम ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? विशेषज्ञ तुम हो, एक्सपर्ट तुम हो, स्पेशलाइज तुम हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। प्रभुपाद ने चलाकर कहा, यह प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? विशेषज्ञ तुम हो, मैं कुछ नहीं जानता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अंततः प्रभुपाद का अपने शिष्यों के प्रति क्रोध केवल अनुशंगिक था, यह उन शिष्यों की मूर्खता की प्रतिक्रिया थी जिसके वे पात्र थे। यह उन्हें प्रशिक्षित करने, उनकी परीक्षा लेने का एक ढंग भी था। किंतु प्रभुपाद का यह दिव्य असंतोष निराशा अधिक गहरी थी कि वृंदावन में उनकी भक्ति अभी तक प्रतिफलित नहीं हुई थी। वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के गौरव स्वरूप एक अद्भुत मंदिर चाहते थे, एक ऐसा मंदिर जो सारे विश्व में कृष्ण चेतना की स्थापना कर सके। अपने गुरु महाराज के लिए यह एक भेंट थी और उन्होंने कृष्ण को ऐसा वचन दिया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था। जहां तक प्रभुपाद के शिष्यों के काम पूरा न कर सकने का प्रश्न था, वे विफलता के बोझ और दुख को प्रभुपाद को स्वयं झेलना पड़ा। उनके शिष्य तो कृष्ण की सेवा में उनके साधन थे, क्योंकि साधन ठीक से काम नहीं करते तो दुख उन्हें झेलना था। जैसे बाहों या टांगों के ठीक से न करने की दिशा में सारे शरीर को दुख झेलना पड़ता है, उनकी इच्छाओं को उनके शिष्यों द्वारा पूरा न किए जाना उनकी अपनी हानि थी। इस प्रकार जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण बलराम मंदिर के उद्घाटन में शिष्यों की विफलता को उन्होंने अपना दिव्य विलाप माना। प्रभुपाद के मन की चिंता यद्यपि दिव्य थी, फिर भी वे यथार्थ थी। शिष्यों को शिक्षा देने का केवल बहाना नहीं था, उनके शिष्य अपने गुरु महाराज को सस्ते ढंग से प्रसन्न भी नहीं कर सकते थे। उपयुक्त ढंग से प्रभुपाद की सहायता करने के लिए शिष्यों को उनकी दिव्य मनोवृत्ति को समझना व तदनुसार कार्य करना था। प्रभुपाद अपने शिष्यों के व्यवहारिक और यथार्थ सेवा चाहते थे, शिष्य केवल भावना प्रेरित सेवा से उन्हें प्रसन्न करने की आशा नहीं कर सकते थे। उन्हें कड़ा परिश्रम करना था, भक्ति को गतिशील होना था। प्रभुपाद अपने शिष्यों से चाहते थे कि वे उनकी परियोजनाओं में मदद करें, जिससे श्री प्रभुपाद अपने गुरु महाराज की सेवा कर सकें। परियोजनाएं ऐसी थी कि उनके पूरा होने पर संसार की विपत्ति कट सकती थी। हरे कृष्ण।